नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्राम दीनो दानिश के स्पेशल एडिशन के साथ ज़ुबैर अहमद हाज़िर ख़िदमत है। आज हमारा इस पूरी सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है जिसका उन्वान है ईद और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हम जावेद साहब से आज गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ईद में अल्लाह ताला की तरफ से क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और अल्लाह ताला ईद को किस तरह से गुजारने का हमें बताता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या बातें पता चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम सलाम।
गांधी साहब, रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर का आपस में ताल्लुक क्या है?
ये रमज़ान का महीना एक पूरा महीना है, इसमें आप रोज़े रखते हैं, 29 दिन के रोज़े रखेंगे, 30 दिन के रोज़े रखेंगे। जब रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें एक त्यौहार मुकर्रर कर दिया गया है। त्यौहार मुकर्रर करना ये इंसानी फितरत है। रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मालूम होता है कि जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो लोगों से पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई इस तरह का रिवाज मौजूद है, और लोग बिलमूम ईदें मनाते थे, उन ईदों का जिक्र भी आता है। जाहिलियत के ज़माने में भी ईदें होती थी। ईद का मतलब असल में यह है कि एक ऐसा दिन आप मुकर्रर कर लें जो लौट कर आता रहे। जैसे हम यौम आज़ादी मनाते हैं तो उसको भी ईद आज़ादी कहा जा सकता है। तो अरबी ज़ुबान में ईद का मतलब है वो दिन जो लौट के आता रहता है। आपने दिन मुकर्रर कर लिया, 14 अगस्त हर साल आएगी, आप उसमें यौम आज़ादी मनाते हैं। तो इसी तरीके से ईद के कुछ दिन पहले से मुकर्रर थे, यहूद के यहाँ भी मुकर्रर थे, उनका जिक्र आता है उनकी रवायतों में भी, और तौरात में बाइबल के साहिब में तो बहुत सी ईदों का जिक्र आता है। यानी उसमें बाज़ त्यौहार मुकर्रर कर लिए गए थे जिनमें लोग मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद करते थे, कुछ इबादत करते थे, कुछ कुर्बानियाँ देते थे, इस तरह के मिलवों चीज़ें थी। कुरैश के यहाँ भी ये चीज़ मौजूद थी। तो लोगों को आपने देखा इस तरह की बाज़ तकरीबात में, तो आपने फरमाया कि ये क्या दिन है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ईद के दिन है, हम इसको इसी तरह मनाते हैं। तो आपने फरमाया इनकी जगह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दो दिन मुकर्रर कर दिए हैं कि एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। अब ये दो त्यौहार मुकर्रर कर दिए गए। रोज़े वैसे भी ख़त्म हो सकते थे, लेकिन देखिए उसमें बड़ी खूबसूरती पैदा कर दी गई है कि जब रोज़े ख़त्म होते हैं तो गोया अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का एक त्यौहार है जो आ जाता है, और आप उस दिन सब जमा होते हैं और अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं और उसकी तकबीरात बुलंद करते हैं। और कुरान मजीद में इसका हुक्म भी दिया गया हमको कि रोज़ा असल में शुक्रगुजारी का ज़रिया बनना चाहिए। रोज़ा अपनी ज़ात में भी अल्लाह की शुक्रगुजारी का आखिरी दर्जे में अहतमाम है। तो ये जब ख़त्म हो जाता है, यानी फितर का मतलब क्या है, यानी इफ्तार कर लिया आप, रोज़े ख़त्म हो गए। एक इफ्तार तो हुआ जो हम रोज़ करते हैं, एक इफ्तार हुआ जो पूरे महीने के रोज़ों के बाद हम कर रहे हैं। तो उस इफ्तार के दिन जब रोज़े ख़त्म हो गए तो अब एक त्यौहार है जिसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के हुज़ूर शुक्रगुजार होते हैं, हमारा इमाम खुतबा देता है,
अलामती इजहार है,
उस शुक्रगुजारी का अलामती इजहार है। और उस अलामती इजहार को बड़ी शान दे दी गई है, और आपने ये देखा है कि उसके अंदर जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है, तकबीरात गलियों बाजारों में बुलंद की जाती हैं, लोग इसी तरीके से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हुए जाते हैं और अल्लाह की हमद सना की जाती है, तो एक अजीब समाज से पैदा हो जाता है जिससे मुसलमान उम्मत के अंदर एक इज्तमाईत नमदार होती है। इसको अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि ईद आज़ादा शिको है मुल्क दिन।
अच्छा, ये ईद उल फितर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून आमाल क्या थे? आमतौर पर आप किस तरह से नमाज के लिए जाया करते थे, वापसी में क्या करते थे, क्या चीज़ खाते थे आप, इस तरह की कोई आमाल मिलते हैं हमें?
देखिए, एक चीज़ तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के लिए क्या सुन्नत कायम की। ईद में एक चीज़ तो वो है कि जिसको आपने दीन की हैसियत से जारी फरमाया है, वो ये है कि आप दो रकत नमाज पढ़ेंगे। ये दो रकत नमाज लाजिम की गई है, हर मुसलमान को ये नमाज़ पढ़नी चाहिए। इस नमाज में कोई इकामत नहीं होती, ये उसके बगैर अदा की जाती है, इसके लिए अजान भी नहीं दी जाती। आप जाते हैं नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, इसमें खुतबे भी बाद में दिए जाते हैं, दो खुतबे ही देना आपकी सुन्नत है इसमें। यानी एक खुतबा देकर आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे, फिर उसके बाद खुतबा देते थे। दोनों खुतबों में ये अहतमाम भी मालूम होता है रवायतों से कि पहले खुतबे में आप लोगों को उनकी दीनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे करते हैं, दूसरे में ज़्यादातर दुआएँ करते थे अल्लाह के हुजूर में। इसमें तकबीरात कही जाती हैं, ये तकबीरात खुतबे के दौरान में भी आपने देखा होगा कि आइम्मा आमतौर पर कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि रास्ते में जाते हुए बिलमूम तकबीरात कहते जाते थे,
ईदगाह
की तरफ जाते हुए, ईदगाह से वापस आते हुए। हुजूर ने यह तरीका भी इख्तियार किया कि मस्जिद के बजाय ये बाहर खुले मैदान में पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हो सके। लोगों को आमतौर पर तरगीब दी, यहाँ तक कि ख्वातीन को भी कहा। ख्वातीन ने बाज़ उज़र पेश किए तो आपने फरमाया कोई हरज की बात नहीं, अगर तुम नमाज़ पढ़ने की पोजीशन में नहीं हो तब भी आ जाओ और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो जाओ। तो इस तरह बड़े अहतमाम के साथ गोया इस दिन नमाज पढ़ी जाती है, इसकी इब्तदा इससे होती है। मुसलमानों के यहाँ क्योंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक और रोज़े तो सबसे बढ़कर उसका इजहार है, तो अल्लाह के साथ ताल्लुक की बड़ी गैरमामूली अहमियत है। तो हम अपने त्यौहार की इब्तदा भी अल्लाह की तकबीर से, अल्लाह की हमद से करते हैं। हुज़ूर का तरीका यह था, आमतौर पर यह बयान किया जाता है, और इसमें मैं नहीं समझता कि इसको कोई आप उस तरह सुन्नत करार दे सकते हैं, क्योंकि खजूर अरबों के यहाँ आमतौर पर खाई जाती, खजूर अरबों का आम फल है, लेकिन हुज़ूर आमतौर पर खजूर ले लेते थे, جانے سے پہلے.
اسی طرح آپ لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیا
نیا لباس پہننے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور آپ کا لباس تو عام طور پر بہت دھلا ہوا بہت صاف ستھرا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت تو ضرب المثل ہے, یعنی اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ظاہر عید پر اس کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا, اور پھر آپ بڑی شفقت فرماتے تھے یتیموں پر مسکینوں پر. آپ اپنے صحابہ کرام سے ملتے تھے, اور آپ کی طبیعت میں ایک خاص لطافت بھی تھی. اس لیے بعض موقعوں کے اوپر بہت پاکیزہ مزا بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے. تو اس وجہ سے عید کا دن ملنے میں ملانے میں تقریبات میں گزارا جاتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دن ہم کیا کوئی تفریحات کے لیے گانا بجانا کر لیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے اس پر کچھ تھوڑا سا اعتراض بھی کیا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, اس میں اگر لوگ گانا بجانا بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی منع کرنے کی چیز نہیں ہے. تو لوگوں کی تفریحات کو بھی آپ نے اس میں پسند فرمایا. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے اللہ کی حمد کی, آپ نے تسبیح کی, اس کے بعد باقی وقت اگر آپ تفریحات میں بھی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ عید میں کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہی ہے.